खंड दो, प्रभु यीशु का आरंभिक जीवन। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यह हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार का दूसरा अध्याय और 40, 51 और 52 पद में। अध्याय 3, मिस्र में पलायन, दर्शन के लिए ज्योतिषियों का आगमन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। और उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। मिस्र में पलायन। उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ और उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि वह उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने विश्वद्वक्ता के द्वारा कहा था, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है, पूरा हो। हेरोदेस द्वारा यीशु को मार डालने का प्रयास। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के और उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे हैं नहीं। नासरत में वापसी। हेरोदेस के मरने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ और बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। इसलिए वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा, और स्वप्न में ईश्वरीय चेतावनी पाकर वह बाहर ही बाहर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यरूशलेम में बालक यीशु। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसा के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया। और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब वह नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर के उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूटते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। परंतु उसकी माता ने यह सब बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई। तिबिरियुस कैसर की राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुतनियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदेस गलील का शासक था, तथा उसका भाई फिलिपुस इतुरैया और त्रोनितिस प्रांत का शासक और लिसानियास अबिलेने का शासक था, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकराया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, और वह यर्दन के आसपास के सारे देश में आकर प्रचार करने लगा, मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यर्दन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए, और अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। परंतु जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो भी पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। तब महसूल लेने वाला भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? और उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना, और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। और यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। और जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं, तब यूहन्ना ने उन सब के उत्तर में कहा, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ के चिन्ह का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, ना ही मैं उस योग्य हूँ, ना ही मैं इस योग्य हूँ कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूपा उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को वह ना बुझने वाली आग में जलाएगा। यूहन्ना स्वयं तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, जो सच्ची ज्योति थी, जो जगत में आती है और हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा अस्तित्व में आया, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो स्वाभाविक तरीके से, ना शारीरिक इच्छा से और ना ही मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन मनुष्य बना और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा है, जो मेरे पीछे आ रहा है वह मुझसे भी महान है, क्योंकि उसका अस्तित्व तो मुझसे भी पहले था, और उसकी परिपूर्णता से हम सब ने एक के बाद एक अनुग्रह प्राप्त किया है। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है, परंतु परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो पिता के दाहिने हाथ की ओर है, उसी ने उसे प्रकट किया है।